सतत उद्दीपक विधि मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई। इस विधि को अन्य नामों जैसे सही तथा गलत केसेस की विधि मेथड ऑफ राइट एंड रॉन्ग केसेस या बारंबारता की विधि मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी की संज्ञा दी जाती है। इस विधि द्वारा RL ज्ञात करने में प्रत्येक प्रयास में उद्दीपक को कुछ समय के लिए व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता है तथा उसके बाद प्रयोज्य को उसके बारे में बतलाना होता है। प्रत्येक प्रयास में भिन्न भिन्न मात्रा के उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं। इनमें तो कुछ उद्दीपक ऐसे होते हैं जो सीमांत से ऊपर होते हैं और उनका स्पष्ट प्रत्यक्षण प्रयोज्य कर लेता है तथा कुछ ऐसे होते हैं जो सीमांत से नीचे होते हैं और उनका सही प्रत्यक्षण दुर्लभ होता है। भिन्न भिन्न मात्रा के उद्दीपकों को आरोही श्रृंखला तथा अवरोही श्रृंखला में प्रस्तुत न कर उस अनियमित रूप से इरेगुलरली या यादृच्छिक रूप से रैंडमली प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ RL बताए गए सभी उद्दीपक के प्रतिशत का माध्य होता है। DL ज्ञात करने में एक मानक उद्दीपक होता है तथा कई परिवर्त्य उद्दीपक होते हैं। इनमें से कुछ परिवर्त्य उद्दीपक तो मानक उद्दीपक की मात्रा से बड़े होते हैं तथा कुछ मानक उद्दीपक की मात्रा से कम होते हैं। प्रत्येक परिवर्त्य उद्दीपक की तुलना मानक उद्दीपक से कई बार की जाती है और परिवर्त्य उद्दीपकों को मानक उद्दीपक के साथ अनियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। मानक उद्दीपक तथा परिवर्त्य उद्दीपक को बारी बारी से प्रस्तुत किया जाता है या एक साथ भी प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रयोज्य को कम या अधिक के रूप में अपना निर्णय देना होता है। बराबर के निर्णय नहीं देने की सलाह दी जाती है। यद्यपि विभिन्न प्रयासों में कई परिवर्त्य उद्दीपक दिए जाते हैं, उनका मान सभी प्रयासों में एक समान रहता है। प्रयोज्य द्वारा किए गए निर्णयों का माध्य DL कहलाता है। ग औसत त्रुटि विधि मेथड ऑफ एवरेज एरर औसत त्रुटि मनोदैहिकी का सबसे पुरानी विधि है। इस विधि को अन्य नामों जैसे समायोजन विधि, पुनरुत्पादन विधि या तुल्य उद्दीपकों की विधि भी कहा जाता है। इस विधि में प्रयोज्य को दो उद्दीपक एक साथ दिए जाते हैं, उनमें से एक उद्दीपक मानक उद्दीपक तथा दूसरे को परिवर्त्य उद्दीपक कहा जाता है। मानक उद्दीपक की प्रमुख विशेषता यह होती है कि यह प्रयोग के समय बिल्कुल ही निश्चित होता है और इसे न तो प्रयोगकर्ता और न प्रयोज्य ही घटा बढ़ा सकता है। परिवर्त्य उद्दीपक की विशेषता यह है कि प्रयोग के दौरान प्रयोगकर्ता तथा प्रयोज्य दोनों ही उसको घटा बढ़ा दे सकते हैं। औसत त्रुटि विधि में प्रयोगकर्ता परिवर्त्य उद्दीपक को मानक उद्दीपक से कभी तो बड़ा करके तथा कभी छोटा करके प्रयोज्य को देता है। प्रयोज्य परिवर्त्य उद्दीपक को घटा बढ़ाकर मानक उद्दीपक के बराबर करता है, जो कि यहाँ प्रयोज्य स्वयं ही परिवर्त्य उद्दीपक को घटा बढ़ाकर समायोजन करता है, इसलिए इस विधि को समायोजन विधि भी कहते हैं। इस विधि में प्रयोज्य कई प्रयासों तक परिवर्त्य उद्दीपक को मानक उद्दीपक के बराबर करता जाता है और बाद में प्रयोगकर्ता भी निर्णयों का एक औसत ज्ञात करता है। इन सभी प्रयासों के औसत को ही RL की संज्ञा दी जाती है। औसत त्रुटि विधि उपयुक्त अन्य दो मनोदैहिक विधियों से एक अर्थ में भिन्न है। सीमा विधि तथा सतत उद्दीपक विधि में उद्दीपकों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना सिर्फ प्रयोगकर्ता के हाथ में होता है, परंतु औसत त्रुटि विधि में उद्दीपकों में जोड़ घटाव करना या परिवर्तन करना प्रयोगकर्ता के अलावा प्रयोज्य के हाथ में भी होता है। औसत त्रुटि विधि में कुछ खास खास तरह की सतत त्रुटियां होती हैं। इन त्रुटियों में स्थान त्रुटि तथा गति त्रुटि प्रधान है, अतः इन्हें नियंत्रित करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना अनिवार्य है, जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं। एक, प्रयोग के कुल प्रयासों के आधे प्रयासों में परिवर्त्य उद्दीपक को मानक उद्दीपक से बड़ा और बाकी आधे प्रयासों में परिवर्त्य उद्दीपक को मानक उद्दीपक से छोटा रखकर प्रयोज्य को देना चाहिए। इससे प्रयोज्य में गति की दिशा समायोजित एवं संतुलित होगी और प्रयोज्य में गति त्रुटि नियंत्रित होगी। गति त्रुटि वैसे पूर्वाग्रह को कहा जाता है जो भीतरी गति या बाहरी गति करने में प्रयोज्य को विशेष मदद करता है। दो, प्रयोगों के कुल प्रयासों के आधे में परिवर्त्य उद्दीपक को मानक उद्दीपक से बायां तथा बाकी आधे प्रयासों में दायां रखकर प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इससे स्थान संबंधी होने वाला विशेष लाभ संतुलित हो जाता है और प्रयोज्य में स्थान त्रुटि नियंत्रित हो जाता है। स्थान त्रुटि से तात्पर्य एक वैसे पूर्वाग्रह से होता है जो प्रयोज्य को उद्दीपक बाएं या दाएं रखे जाने पर उसके बारे में सही निर्णय लेने में अनावश्यक रूप से मदद करते हैं। 3. प्रत्येक प्रयास में परिवर्तीय उद्दीपक का प्रारंभिक मान परिवर्तित कर देना चाहिए ताकि प्रयोज्य को परिवर्तीय उद्दीपक को मानक उद्दीपक के बराबर करने में कोई असंगत संकेत मिलने से विशेष लाभ न हो सके। इन 3 विधियों का प्रयोग मनोदैहिक प्रयोज्यों में RL तथा DL निर्धारण करने में काफ़ी किया जाता है। इसका प्रयोग ध्यान, संवेदन, प्रत्यक्षण आदि के क्षेत्रों में विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में प्रायः किया जाता है। पैराग्राफ चेंज, मनोवैज्ञानिक मापनी विधियां, साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड्स। मनोवैज्ञानिक मापनी विधियां मनोवैज्ञानिक शोध तथा शैक्षिक शोध में अधिक प्रयोग होता है। इस तरह की मापनी प्रविधियों में वैसे उद्दीपकों का परिमाणात्मक व्याख्या की जाती है जिसे किसी भौतिक मापनी जैसे सेंटीग्रेड, किलोग्राम आदि में मापना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में जहां जिन उद्दीपकों का अध्ययन किया जाता है उनमें मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं जिनका कोई भौतिक संदर्भ या आधार नहीं होता है। जैसे सुंदरता का यदि मापनी विधि द्वारा अध्ययन किया जाए तो इसे किसी मनोवैज्ञानिक मापनी विधि द्वारा ही वर्णन किया जा सकता है। मनोभौतिकी भौतिक मापनी विधि साइकोफिजिकल स्केलिंग मेथड द्वारा नहीं, क्योंकि सुंदरता एक मनोवैज्ञानिक गुण साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है जिसे किसी भौतिक मापनी फिजिकल स्केल अर्थात किलोग्राम, सेंटीग्रेड आदि में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ट्रोग्रेशन 1958 ने मनोवैज्ञानिक मापनी विधि को कुछ इसी प्रकार परिभाषित किया है, कोट, मनोवैज्ञानिक मापनी विधि मनोवैज्ञानिक गुणों के मापन के लिए एक स्केल बनाने की प्रविधि है, अनकोट। प्रमुख मनोवैज्ञानिक मापनी विधियां निम्नांकित हैं, क, कोटि क्रम विधि मेथड ऑफ रैंक ऑर्डर, ख, युग्मित तुलना विधि मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन, ग, क्रमिक श्रेणियों की विधि मेथड ऑफ सक्सेसिव कैटेगरीज। इन विधियों का वर्णन अलग अलग अनुच्छेदों में आगे किया गया है। कोटि क्रम विधि मेथड ऑफ रैंक ऑर्डर मनोवैज्ञानिक मापनी विधियों में यह विधि सबसे अधिक सरल एवं लोकप्रिय है। इस विधि को कभी कभी गुणवत्ता क्रम विधि भी कहा जाता है। इस विधि का प्रतिपादन मूल रूप से केटल 1903 तथा स्पीयरमैन 1904 द्वारा किए गए शोधों के परिणाम स्वरूप हुआ। इस विधि में अध्ययन किए जाने वाले सभी उद्दीपकों को एक साथ प्रयोज्य या प्रयोज्यों के सामने रख दिया जाता है। प्रयोज्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे दिए गए उद्दीपकों को उच्चतम से न्यूनतम दिशा में कोटिबद्ध कर दें। यह कोटिकरण किसी विशेष विमा डायमेंशन पर उन्हें करना होता है। सामान्यतः कोटि 1 उस उद्दीपक को दिया जाता है जो विमा डायमेंशन पर उच्चतम स्थिति में होते हैं तथा अंतिम कोटि उस उद्दीपक को दिया जाता है जो विमा पर न्यूनतम स्थिति पर होते हैं। इस विधि में चूँकि सभी उद्दीपकों को एक साथ कोटिबद्ध रैंक करने के लिए दिया जाता है अतः उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण के क्रम से संबंधित इसमें कोई समस्या नहीं उठती है। जब सभी उद्दीपकों को कोटिबद्ध कर लिया जाता है तो उसका विशेष सांख्यिकीय विश्लेषण करके किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। एक उदाहरण मान लिया जाए कि 10 छात्रों में से प्रत्येक को 10 फिल्मी जगत की नायिकाओं के नाम दिए गए तथा उनसे यह प्रार्थना किया गया कि आप इन नायिकाओं को उनकी सुंदरता के ख्याल से 1 से 10 का कोटि देते हुए श्रेणीकरण करें। कोटि 1 उस नायिका को दे दें जो आपकी नज़र में सबसे अधिक सुंदर हो तथा कोटि 10 उस नायिका को दे दें जो आपकी नज़र में सबसे कम सुंदर हो। प्राप्त आंकड़ों को तथा उसका विश्लेषण करके तालिका 26 में दिखलाया गया है। प्राप्त कोटियों से एक मापनी या स्केल विकसित किया गया है जिसमें कोटियों के चयन प्राप्तांकों को पी मूल्यों में बदल दिया गया है जिसे बाद में जेड मूल्यों में बदल दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज, अगर कोई छात्र किसी नायिका को कोटि 1 रैंक 1 देता है इसका मतलब यह हुआ कि वह उसे सबसे अधिक सुंदर समझता है तथा उसी तरह से कोटि 2 से यह पता चलता है कि कोटि 2 प्राप्त करने वाली नायिका छात्र की नज़र में अन्य 8 नायिकाओं से सुंदर है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि छात्र द्वारा दिया गया कोटि उसके चयन प्राप्तांक को बदलाते हैं। सामान्यतः चयन प्राप्तांक को अक्षर सी द्वारा दिखलाते हैं और इसे सूत्र 21 द्वारा ज्ञात करते हैं। सूत्र, जैसे अगर कोई छात्र किसी नायिका को 4th कोटि देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका सी इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 होगा। इसके बाद प्रत्येक उद्दीपक या नायिका का प्रत्येक छात्र द्वारा किए गए कोटियों का माध्य ज्ञात किया जाता है, जिसे MR से संकेत किया जाता है। MR ज्ञात करने का सूत्र है प्रत्येक पी को तालिका 27 के आधार पर Z में बदल दिया जाता है। तालिका 26 में किए गए परिकलन की परिशुद्धता की जांच की भी कुछ विधियां हैं, जैसे MR का औसत N+1 ब्रैकेट क्लोज बाई 2 के बराबर होना चाहिए। उपयुक्त तालिका में MR का योग 54.6 जिसका औसत 5.46 इक्वल टू 5.5 आता है, जो N-1 बाई 2 इक्वल टू 10+1 ब्रैकेट क्लोज बाई 2 इक्वल टू 11/2 इक्वल टू 5.5 के बराबर है। उसी तरह MC का औसत N-1/2 इक्वल टू 10-1/2 इक्वल टू 9/2 इक्वल टू 4.5 के बराबर है। उसी तरह का P का औसत 0.5 होना चाहिए। तालिका में P का योग 5.01 जिसका औसत अर्थात 5.01/10 इक्वल टू 0.5 होगा। कोटिक्रम विधि के कुछ लाभ तथा परिसीमाएं हैं। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार बतलाए गए हैं। एक, कोटिक्रम विधि में चर्च या निर्णायक स्केल या मापने के सभी हिस्सों को प्रयोग करने के लिए बाध्य रहते हैं। अपने इसी गुण के कारण इस विधि को रेटिंग मापने से श्रेष्ठ माना जाता है। रेटिंग स्केल में निर्णायक गण स्केल या मापने के कुछ श्रेणियों या बिंदुओं का प्रयोग कर अपना काम चला लेते हैं, परंतु कोटिक्रम विधि में तो निर्णायकों को प्रत्येक वस्तु या उद्दीपक को एक न एक कोटि देना ही पड़ता है। पैराग्राफ चेंज दो, कोटिक्रम विधि में निर्णायकों द्वारा केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि नहीं संभव हो पाती है। इसका कारण यह है कि इसमें कुछ वस्तुओं या उद्दीपकों को निर्णायकों द्वारा उच्च कोटि तथा कुछ वस्तुओं या उद्दीपकों को निर्णायकों द्वारा निम्न कोटि निश्चित रूप से दिया जाता है। अगर इस ख्याल से इस विधि की तुलना रेटिंग विधि से की जाए तो हम पाएंगे कि यह विधि रेटिंग विधि से श्रेष्ठ है, क्योंकि रेटिंग विधि में केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि निर्णायकों द्वारा अक्सर किया जाता है। तालिका 26 एवं तालिका 27। तीन, कोटिक्रम विधि में निर्णायकों की प्रत्येक उद्दीपक की तुलना अन्य सारे उद्दीपकों से करना होता है, और इस तरह का विभेद डिस्क्रिमिनेशन करते हुए उसे कोटि प्रदान करना होता है। रेटिंग मापनी में इस तरह की तुलना एवं विभेदन कार्य को आसानी से निर्णायक अपेक्षा कर बैठते हैं। इन लाभों के बावजूद कोटिक्रम विधि की कुछ परिसीमाएँ भी हैं जो निम्नांकित हैं। एक, कोटिक्रम विधि की सबसे प्रमुख परिसीमा यह है कि इस विधि में उन गुणों या विशेषताओं के बारे में कोई परिणामात्मक सूचनाएं नहीं मिल पाता है जो सचमुच में कोटियों रैंक्स को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे यदि किसी बुद्धि परीक्षण पर ए बी तथा सी को क्रमशः 60, 59 एवं 20 अंक आया और यदि इसे कोटिबद्ध किया जाए तो क्रमशः कोटि 1, 2 तथा 3 दिए जाएंगे। अब यहाँ कोटि 1 तथा 2 का अंतर एवं 2 तथा 3 का अंतर क्या समान है? शायद नहीं, क्योंकि कोटि 1 प्राप्तांक 60 का प्रतिनिधित्व कर रहा है तथा कोटि 2 प्राप्तांक 59 और 60 का, तथा 59 में मात्र एक अंक का ही अंतर है। परंतु कोटि 3 जो प्राप्तांक 20 का प्रतिनिधित्व कर रहा है वह कोटि 2 द्वारा प्रतिनिधित्व पाने वाले अंक यानी 59 से 39 कम है। कोटि 1, 2 तथा 3 देखकर प्राप्तांकों के इन विशेषताओं का अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज दो, कोटिक्रम विधि का प्रयोग तभी अर्थपूर्ण एवं सार्थक ढंग से होता है जब उद्दीपकों स्टिमुलाई की संख्या कम होती है। उद्दीपकों की संख्या अधिक होने पर इस विधि के प्रयोग में जटिलता इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी शोधकर्ता इसका प्रयोग वैसी परिस्थितियों में नहीं करना चाहता है। इन परिसीमाओं के बावजूद कोटिक्रम विधि मनोवैज्ञानिक शोधों में अधिक प्रचलित है। इस विधि की सरलता इसकी लोकप्रियता का कारण है। पैराग्राफ चेंज, युग्मित तुलना विधि। युग्मित तुलना विधि मनोवैज्ञानिक मापनी विधि की एक महत्वपूर्ण विधि है। मूल रूप से इस विधि का प्रतिपादन कोहन द्वारा 1894 में प्रयोज्यों या व्यक्तियों के रंग पसंदों के अध्ययन में किया गया था। बाद में इस विधि का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। इस विधि में अध्ययन किए जाने वाले उद्दीपकों का युग्म तैयार कर लिया जाता है और व्यक्ति या प्रयोज्य को इस युग्म के इन दोनों उद्दीपकों को ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक निर्णय करके यह बतलाना होता है कि उसमें से कौन उद्दीपक को वह अधिक पसंद करता है। सच पूछा जाए तो यह विधि सतत उद्दीपक अंतर विधि का एक विस्तृत रूप है। सतत उद्दीपक अंतर विधि में प्रत्येक बार प्रयोज्य के सामने दो उद्दीपकों को उपस्थित किया जाता है। इसमें से एक मानक उद्दीपक होता है तथा दूसरा तुल्य उद्दीपक होता है। अतः प्रत्येक बारी में एक उद्दीपक को एक ही मानक उद्दीपक के साथ तुलना किया जाता है। युग्मित तुलना विधि में प्रत्येक उद्दीपक को अन्य सभी उद्दीपकों के साथ तुलना किया जाता है और इसलिए प्रत्येक उद्दीपक एक दूसरे के लिए एक मानक उद्दीपक का कार्य करता है। प्रयोज्य को यह बतलाना होता है कि दिए गए मनोवैज्ञानिक गुण के आधार पर युग्म के किस उद्दीपक को वह अधिक पसंद करता है। इस विधि में प्रयोज्य को समानता तक का निर्णय न देने का अनुरोध किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रयोज्य को दिए गए युग्म से किसी एक के पक्ष में अपना निर्णय करना ही पड़ता है। अगर उसे उस ढंग का तुलनात्मक निर्णय करने में कोई कठिनाई भी होती है तो उसे किसी युग्म के पक्ष में अपना निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि युग्मित तुलना विधि में समानता की अनुक्रिया के विश्लेषण का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इस विधि में किसी उद्दीपक की तुलना अपने आप से नहीं की जाती है और यह पूर्व कल्पना की जाती है कि ऐसे निर्णय की बारंबारता कुल प्रयोज्य का निर्णयों का आधा होगा तथा उसका पी प्रोपोर्शन 0.5 होगा। पैराग्राफ चेंज। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि युग्मित सहचर विधि का आधार तुलनात्मक निर्णय का नियम है। अतः इस नियम की व्याख्या यहाँ अपेक्षित है। तुलनात्मक विधि के नियम का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया। इस विधि में दो उद्दीपकों की तुलना से प्राप्त आंकड़ों का चरणबद्ध वर्णन किया जाता है। जब दो उद्दीपकों की तुलना किसी मनोवैज्ञानिक सांतत्य या मनोवैज्ञानिक गुण के आधार पर किया जाता है तो इससे प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता को कोई परिमाणात्मक मूल्य या मान नहीं प्राप्त होता है, परंतु तुलनात्मक निर्णय के नियम के परिकल्पनात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से ऐसा करना संभव हो पाता है। इस नियम को परिभाषित करते हुए टॉगरसन 1958 ने कहा है, कोट, तुलनात्मक निर्णय का नियम सूत्रों का एक सेट है जो इस बात से संबंधित होता है कि किसी मनोवैज्ञानिक सांतत्य पर दो उद्दीपकों के भेद मूलक भिन्नता तथा मापनीय मूल्यों के संदर्भ में कोई भी दिया गया उद्दीपक के अन्य दूसरे उद्दीपक अर्थात जे से कितने अनुपात में एक दिए हुए गुण पर अधिक है, अनकोट। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि तुलनात्मक निर्णय का नियम कुछ खास खास सूत्रों के माध्यम से प्रभावी होता है और वे मूलतः निम्नांकित आधार तत्वों से उत्पन्न होते हैं। एक, कोई भी उद्दीपक जिसे प्रयोज्य के सामने उपस्थित किया जाता है एक अनुक्रिया पैदा करता है जिसका मनोवैज्ञानिक सांतत्यक पर एक मूल्य होता है। थर्स्टन की शब्दावली में इस अनुक्रिया को भेदमूलक प्रक्रिया कहा जाता है तथा उसे SI से दिखलाया जाता है। दो, जब एक ही उद्दीपक को बार बार व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाता है तो उससे एक ही तरह की विभेदमूलक प्रक्रिया उत्पन्न नहीं होता है। कभी तो विभेदक प्रक्रिया का मान या मूल्य अधिक होते देखा जाता है तो कभी उसका मूल्य या मान कम होते पाया जाता है। इसका परिवर्तन का मूल कारण प्रयोज्य की मनोदशा में परिवर्तन होता है। तीन, अगर कोई उद्दीपन व्यक्ति के सामने कई बार उपस्थित किया जाता है तो इससे एक ऐसा बारंबारता वितरण फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त होगा जो प्रसामान्य होगा। इस तरह से प्रत्येक उद्दीपक द्वारा विभेद प्रक्रिया का एक प्रसामान्य वितरण उत्पन्न होता है जिसे चित्र 5 में दिखलाया गया है। 4, किसी भी उद्दीपक द्वारा उत्पन्न विभेद मूलक प्रक्रियाओं डिस्क्रिमिनल प्रोसेसेस के प्रसामान्य वितरण का माध्य तथा मानक विचलन को ही क्रमशः मापनीय मूल्य तथा विभेद मूलक विभिन्नता कहा जाता है। वह विभेद मूलक अनुक्रिया जो किसी उद्दीपक द्वारा बार बार उत्पन्न की जाती है को मॉडल विभेद मूलक प्रक्रिया कहा जाता है और इसे SI कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। थर्स्टन ने तुलनात्मक नियम, तुलनात्मक निर्णय का नियम, लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट के 5 केसेस बतलाए हैं जो इस प्रकार है। केस 1, यहाँ तुलनात्मक निर्णय का नियम का उपयोग अपने संपूर्ण रूप में एक ही प्रयोज्य द्वारा उद्दीपकों के युग्म के बारे में किए गए बार बार कई निर्णयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। यह नियम अपने संपूर्ण रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ SI उद्दीपक I या कथन I का मॉडल विभेदन मूलक प्रक्रिया या मापनीय मूल्य S-SI इज इक्वल टू उद्दीपक J या कथन I का मॉडल विभेदक मूलक प्रक्रिया या मापनीय मूल्य ZIJ इज इक्वल टू उद्दीपकी I या J के तुलनात्मक निर्णय का Z मूल्य। θI इज इक्वल टू उद्दीपक I द्वारा उत्पन्न किए गए विभेद मूलक प्रक्रियाओं का मानक विचलन। I उद्दीपक I द्वारा उत्पन्न किए गए विभेद मूलक प्रक्रियाओं का मानक विचलन। θJ उद्दीपक द्वारा उत्पन्न किए गए भेद मूल प्रक्रियाओं का मानक विचलन। RIJ इज इक्वल टू उद्दीपक I अर्थात SI एवं उद्दीपक J अर्थात SJ के बीच सहसंबंध। केस 2, यहाँ तुलनात्मक निर्णय के नियम लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट को उस समूह परिस्थिति ग्रुप सिचुएशंस में लागू किया जाता है जहाँ समूह के प्रत्येक प्रयोज्य प्रत्येक युग्म के बारे में एक ही बार निर्णय करते हैं। इन अनुप्रयोग के लिए भी केस 1 के समान ही नियम को संपूर्ण रूप में क्रियान्वयन कर आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। केस 3, यहाँ RIJ को 0 मान लिया जाता है। इस ढंग की पूर्व कल्पना विशेषकर उस परिस्थिति में अधिक उचित होता है जहाँ उद्दीपकों की स्पष्ट पहचान प्रयोग द्वारा संभव नहीं हो पाता है। जब उद्दीपकों के युग्म के प्रति किए गए अनुक्रियाओं या अंतर सहसंबंध 0 मान लिया जाता है तो सूत्र 25 का अंतिम भाग अपने आप हट जाता है और संपूर्ण नियम या सूत्र घटकर छोटा हो जाता है जो इस प्रकार है। सूत्र 26। केस 4, इस अवस्था में तुलनात्मक निर्णय के नियम को और सरल बनाने के ख्याल से थर्स्टन भेद मूलक प्रक्रियाओं का मानक विचलन अर्थात भेद मूलक विभिन्नताओं को समान मान लिए। विभेद मूलक विभिन्नताएं उस परिस्थिति में समान होंगी जब सभी उद्दीपकों की कठिनता स्तर लगभग एक समान हो। ऐसी परिस्थिति में तुलनात्मक निर्णय का नियम और अधिक सरल होकर इस प्रकार हो जाता है। सूत्र 27। केस 5, यहाँ तुलनात्मक निर्णय के नियम लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट को और अधिक सरल बनाने के लिए थर्स्टर ने भेद मूलक विभिन्नता के बारे में एक और अतिरिक्त पूर्व कल्पना किया ताकि यह नियम अपने सरलतम रूप में आ जाए। वह पूर्व कल्पना यह थी कि सभी विभेदन मूलक विभिन्नताएं अर्थात सभी मानक विचलन समान हैं अर्थात θI इक्वल टू θJ है। अब तुलनात्मक निर्णय का नियम और भी अधिक सरल हो जाता है जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। सूत्र 28। यहाँ θI का प्रयोग दोनों अर्थात θI एवं θJ के लिए किया जाता है क्योंकि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा जे है, अगर थीटा आई अंडर रूट टू उद्दीपकों या कथनों के विभिन्न युग्मों के स्केल पृथककरण को मापन की एक या संपूर्ण इकाई मान लिया जाए, जो तुलनात्मक निर्णय का नियम अपने अंतिम सरलतम रूप में इस प्रकार हो जाता है। सूत्र 29, तुलनात्मक निर्णय का नियम लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट अपने इस सरलतम रूप में प्रत्येक उद्दीपक का मापने मूल्य याद करने की सिफारिश करता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक उद्दीपक की तुलना अन्य सभी चुने गए उद्दीपक के साथ कई बार कर लिया जाए, ताकि यह स्पष्ट रूप से पता चल सके कि उद्दीपक की तुलना में कितनी बार या कितनी अनुपात में अधिक पसंद किया गया है या अधिक श्रेष्ठ समझा गया है। इन अनुपातों के आधार पर कुछ अनुभाविक आकलन करने का प्रयास युग्मित तुलना विधि में किए जाते हैं। युग्मित तुलना विधि द्वारा किसी आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए यह आवश्यक है कि निम्नांकित दो कसौटियों की अनदेखी न की गई हो। एक, इस विधि द्वारा किसी प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्दीपकों की संख्या कम हो। उद्दीपकों की संख्या अधिक होने से प्रयास की अभिरुचि तथा प्रेरणा पर कुप्रभाव पड़ता है, फलतः आंकड़े विश्वसनीय नहीं रहते हैं। दो, जहां शोधकर्ता का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक विमा का एक अंतराल मापने विकसित करना हो, युग्मित तुलना विधि को अधिक उपयुक्त समझा जाता है। आंकड़े युग्मित तुलना विधि के विश्लेषण के लायक हों, इसके लिए यह आवश्यक है कि उद्दीपक के प्रत्येक युग्म की तुलना कई बार किया जाए। इसके लिए परिस्थिति को निम्नांकित तीन अवस्थाओं के अनुकूल होना चाहिए। ए, उद्दीपकों के प्रत्येक युग्म के बारे में एक ही प्रयोज अनेकों बार तुलना कर अपना निर्णय दिए हों। बी, कई प्रयोजियों द्वारा उद्दीपकों के प्रत्येक युग्म को एक एक बार तुलना कर अपना निर्णय दिया गया हो। सी, कई प्रयोजियों द्वारा उद्दीपकों के प्रत्येक युग्म को अनेकों बार तुलना कर निर्णय दिया गया हो। युग्मित तुलना विधि द्वारा उद्दीपकों के मापनीय मूल्य ज्ञात करने की प्रविधि, टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग स्केल वैल्यू ऑफ स्टिमुलाई बाय मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन। इस विधि द्वारा उद्दीपकों का मापनीय मूल्य तैयार करने में पहले चुने गए उद्दीपकों या कथनों की संख्या तथा उससे बनने वाले युग्म की संभावित संख्या तय कर ली जाती है। मान लिया जाए कि सह शिक्षा के प्रति 5 कथनों का मापनीय मूल्य युग्मित तुलना विधि द्वारा किया ज्ञात किया जाना तय किया गया है। 5 उद्दीपकों से संभावित युग्म की संख्या एन अंडर ब्रैकेट एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज बाई 2 इज इक्वल टू 5 अंडर ब्रैकेट 5 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 5 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज बाई 2 इज इक्वल टू 20 बाई 2 इज इक्वल टू 10 होगी। इस 10 युग्मों में से प्रत्येक युग्म की कुछ प्रयोज्यों जैसे 100 प्रयोज्यों को एक एक बार देकर उनका निर्णय प्राप्त किया गया। तालिका 28 में इन निर्णयों से प्राप्त बारंबारता को दिखलाया गया है। इस तालिका की बारंबारता से यह पता चलता है कि एक उद्दीपक वाक्य दूसरे वाक्य या उद्दीपक की तुलना में कितना बार अधिक अनुकूल समझा गया। इस तरह के बारंबारता टेबल को एफ मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसे n इंटू n मैट्रिक्स के रूप में तालिका 28 में दिखलाया गया है। तालिका 28 की बारंबारता यह बतलाती है कि कॉलम वाले कथनों को रो वाले कथनों की तुलना में 100 में से कितनी बार अधिक अनुकूल समझा गया। जैसे कॉलम 3 में 1 के समानांतर 60 लिखा गया है, जिसका मतलब यह हुआ कि अब कथन 3 और 1 का युग्म दिया गया तो कथन 3 को कथन 1 की अपेक्षा 100 बार में 60 बार अनुकूल समझा गया। तालिका 28 में विकर्णी अंकनों डायगोनल एंट्रीज को n by 2 is equal to 100 by 2 या 50 से दिखलाया गया है, क्योंकि किसी कथन का अपने आप से तुलना नहीं की जाती है और उसे n by 2 के बराबर मान लिया जाता है। तालिका 28, तालिका 29, तालिका 30। तालिका 30 के सतह के पहला रो में तालिका के सभी जेड प्राप्तांकों को कॉलम वार जोड़ा गया है। दूसरा रो में उद्दीपकों या कथनों की संख्या लिखी गई है। तीसरा रो में कथन की संख्या अर्थात पाँच से प्रत्येक कॉलम के योग में भाग देकर माध्य ज्ञात किया गया है। ज्ञात किया गया माध्य का योग हमेशा शून्य होना चाहिए, अन्यथा परिकलन गलत समझा जाता है। तालिका के सबसे नीचे परिकलन की परिशुद्धता की जांच दिया गया है। जैसे स्पष्ट हो जाता है कि माध्य का योग इक्वल टू -0.642 + 0.642 = 0 है, अतः यहां तक का परिकलन बिल्कुल ही सही है। माध्य का कुछ अंक स्कोर धनात्मक है तथा कुछ ऋणात्मक है। सुविधा के ख्याल से सभी ऋणात्मक अंकों को धनात्मक में बदल दिया जाता है और इसके लिए सबसे न्यूनतम उद्दीपक या एकांश के माध्य के बराबर एक स्थिर धनात्मक अंक से लिया जाता है और सभी के माध्यों में जोड़ दिया जाता है। कथन संख्या एक यहाँ न्यूनतम उद्दीपक है क्योंकि इसका पी का योग सबसे कम यानी 1.80 है। देखें तालिका 29। चूँकि इसका माध्य -0.372 है, अतः इसके बराबर का एक धनात्मक स्थिरांक पॉजिटिव कांस्टेंट स्कोर यानी +0.372 से लिया जाता है और उसे अन्य माध्यों में जोड़ दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि माध्य के सभी अंक धनात्मक हो जाते हैं। परिकलन की परिशुद्धता की जांच इस प्रभाव से कर ली जाती है कि ऐसे माध्यमों का योग जो यहाँ 1.860 है को 0.372 × 5 यानी स्थिरांक को कथनों की संख्या अर्थात n से गुणा करने पर आए अंक के बराबर होना चाहिए। प्रत्येक कथन या उद्दीपक का इस तरह से प्राप्त माध्य को ही मापनी मूल्य कहा जाता है। युग्मित तुलना विधि में प्रत्येक कथन का मापनी मूल्य या थर्स्टन के शब्दावली में मॉडल विभेदन मूलक प्रक्रिया मॉडल डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस ज्ञात कर लेने के बाद उसकी आंतरिक संगति ज्ञात की जाती है। मापनी मूल्यों की आंतरिक संगति ज्ञात करने के लिए पी जिसे पी मैट्रिक्स के रूप में तालिका 29 में दिखलाया गया है की तुलना उन अनुपातों से की जाती है जो प्राप्त मापनी मूल्यों से उत्पन्न हुए हो। इसे प्रत्याशित अनुपात कहा जाता है। इस तरह से यदि प्राप्त अनुपात तथा प्रत्याशित अनुपात में अंतर कम होता है तो कथन के मापनी मूल्यों को आंतरिक रूप से संगत समझा जाता है। यदि यह अंतर शून्य होता है तो इससे पूर्ण आंतरिक संगति का पता चलता है जो शायद ही कभी प्राप्त होता है। जब प्रत्येक कथन या उद्दीपक का पीआईजे तथा पीआईजे का अंतर ज्ञात हो जाता है तो उसके आधार पर फिर एक औसत त्रुटि एरर या औसत असंगति सूत्र 29 द्वारा ज्ञात किया जाता है। 5 उद्दीपक के लिए 0.06 का औसत असंगति एक सामान्य असंगति है क्योंकि इस क्षेत्र के अधिकतर शोधकर्ताओं ने 5 उद्दीपकों तक इतनी मात्रा में असंगति पाई है। औसत असंगति जितना ही कम होता है आंतरिक संगति की विश्वसनीयता उतनी ही अधिक होती है। हेवनर 1930 ने 20 उद्दीपकों का जब युग्मित तुलना विधि मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन द्वारा अध्ययन किया तो पाया कि औसत असंगति 0.024 का था जो कि बहुत ही कम है। पैराग्राफ चेंज। युग्मित तुलना विधि मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन के कुछ लाभ एवं परिसीमाएं हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। 1 इस विधि द्वारा उद्दीपकों का अध्ययन प्रत्येक संभावित युग्मों के रूप में तुलना करके किया जाना संभव होता है, अतः इस विधि द्वारा उद्दीपकों के बारे में जो मापनी मूल्य प्राप्त होते हैं वे काफ़ी विश्वसनीय होते हैं तथा उनके आधार पर संगत सूचनाएं आसानी से ज्ञात हो जाता है। पैराग्राफ चेंज। 2 ट्रॉग्रेसन 1958 के अनुसार युग्मित तुलना विधि की उपयोगिता क्षेत्र बड़ी है, जिसके कारण इस विधि द्वारा कई तरह के मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन सफलतापूर्वक किया गया है। गिलफोर्ड 1954 के अनुसार इस विधि का प्रयोग उन सभी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन में किया जा सकता है जहां उद्दीपकों को युग्म के रूप में चाहे एक साथ या बारी बारी से प्रयोज्यों की को दिया गया है। इसका प्रयोग सफलतापूर्वक संवेगात्मक मूल्य तथा सौंदर्यात्मक मूल्य के निर्धारण में काफ़ी किया गया है। विभिन्न रंगों, डिजाइनों, व्यक्ति के नामों, राष्ट्रीयता के नामों आदि के तुलनात्मक अध्ययन में यह विधि असमानांतर रूप से लाभप्रद साबित हुआ है। इन लाभों के बावजूद इस विधि की कुछ परिसीमाएं हैं जो निम्नांकित हैं। एक, इस विधि की सबसे प्रमुख परिसीमा यह बतलाई गई है कि इसके द्वारा अध्ययन तभी संभव है जब उद्दीपकों की संख्या कम होती है। उद्दीपकों की संख्या अधिक जैसे 50, 60 या उससे भी अधिक हो जाने पर इस विधि द्वारा तुलनात्मक अध्ययन इसलिए संभव नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें जटिलता काफ़ी बढ़ जाती है। पैरा चेंज दो, युग्मित तुलना विधि में कुछ पूर्वाग्रह प्रभाव देखने को मिलते हैं जिसके कारण इसमें स्थान त्रुटि, समय त्रुटि, थकान प्रभाव, अभ्यास प्रभाव आदि होते पाया गया है जिनका कुप्रभाव इस विधि द्वारा संग्रहित आंकड़ों पर पड़ते हैं और परिणाम दोषपूर्ण हो जाते हैं। इन परिसीमाओं के बावजूद युग्मित तुलना विधि मनोवैज्ञानिक मापनी विधियों, साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आजकल इस विधि का प्रयोग सीखने के क्षेत्र की समस्याओं का भी अध्ययन करने में सफलतापूर्वक किया जा रहा है।